नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं विनय सक्सेना, और मेरे साथ तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव जी नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी ओर से भी सभी सुनने वालों को नमस्कार।
पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत का बढ़ता आत्मविश्वास खेलों के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज चेन्नई में खेला जा रहा है। अमेरिका की मेडिसन कीज ने बेलारूस की आर्याना सबलेंका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब पर कब्जा किया, और हॉकी इंडिया लीग में कल महिलाओं का फाइनल खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत का बढ़ता आत्मविश्वास खेलों के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है, जिसमें देश के एथलीटों ने कामयाबी की रोमांचक कहानियां लिखी हैं। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों ने अपनी जीत की ललक से देश को गौरवान्वित किया है और अगली पीढ़ी को ऊंचे लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। पिछले साल हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में अपनी छाप छोड़ी है। संजीव जी, राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन में खिलाड़ियों की तारीफ करना एक बहुत अच्छा संकेत है, जो हमारे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा और उन्हें आगे और अच्छा करने की प्रेरणा भी देगा।
निश्चित तौर पर, और आप देखिए, एक परंपरा शुरू हो गई है कि जब कोई खिलाड़ी अच्छा करता है, या कई बार ऐसा होता कि चूक भी जाता है, तो प्रधानमंत्री फोन से बात करते हैं, अगर ओलंपिक्स गया है, एशियन गेम्स में गए हैं, और वापसी पर सबसे मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं। राष्ट्रपति प्लेयर्स को इस तरह से शुभकामनाएं देती हैं, उनकी तारीफ करती हैं, तो निश्चित तौर पे ये उत्साहवर्धन करता है। और खिलाड़ी भी कहते हैं कि जब हमें देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री फ़ोन करते हैं या हमें शुभकामनाएं देते हैं, तो बहुत ही उत्साह बढ़ता है, और अब उसका फ़र्क दिखता है। आप देखिए, प्लेयर्स अब हमारे जाते हैं तो ओलंपिक्स में एक के बाद एक मेडल जीते हैं,
कीर्तिमान इंडिविजुअल दोनों के मेडल आ रहे हैं,
कर रहे हैं। पहले था कि एक मेडल भी आ जाए, अब 6, 8, 9, अब हम डबल डिजिट के बारे में सोचते हैं। पैरा हमारे एथलीट जो हैं
वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं,
हर बार बढ़ा रहे हैं अपने उसके मेडल्स की संख्या को। तो ओवरऑल आप देखें, दूसरे खेलों में भी प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, और एक स्पोर्टिंग नेशन की जो बात हम करते रहे थे, अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम नहीं कह सकते कि अभी बन गया हमारा देश, बट हाँ, अब जो
कदम बढ़ चुका है आगे,
वो उससे और आने वाले समय और अच्छा होगा।
भारत और इंग्लैंड के बीच 5 ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज चेन्नई में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। निर्धारित 20 ओवर में इंग्लैंड ने 165 रन बनाए, 9 विकेट खोकर, और भारत को 166 रन का लक्ष्य दिया है। भारतीय टीम ने बुधवार को कोलकाता में हुए पहले मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। संजीव जी, 165 रन, 66 रन का लक्ष्य अचीवेबल है?
निश्चित तौर पर। देखिए, मैं मुझे लग रहा है कि जो इंग्लैंड की टीम आई है, सिर्फ जॉस बटलर ही कुछ टिक पा रहे हैं, भारतीय बॉलिंग के सामने फाइट दे रहे हैं, बाकी जो बल्लेबाज हैं वो स्पिन, खास तौर पे कहें तो वरुण चक्रवर्ती को नहीं समझ पा रहे हैं। चक्रवर्ती ने आज, हालांकि थोड़े महंगे रहे हैं, लेकिन 2 विकेट लिए, और आश्चर्य की बात यह है कि चक्रवर्ती थोड़े महंगे रहे, पिछली बार उन्होंने 3 विकेट लिए थे, कम रन दिए थे। तो इंग्लैंड के जो 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 बैटर्स हैं, जो 8 से ज़्यादा की गति से रन बना रहे हैं, और विकेट किसको दे रहे हैं? अभिषेक शर्मा को। अभिषेक शर्मा अच्छे ओपनर हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बट वो पार्ट टाइम बॉलर ही कहे जा सकते हैं। स्पेशली
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो दूसरी टीम पे कुछ डर पैदा करेंगे।
बिल्कुल, और आप देखिए, उन्होंने जो विकेट लिया जेमी स्मिथ का, 11 गेंद पे 22 रन बना चुके थे, और अभिषेक के उस ओवर में वो 6 और 4 ले चुके थे। अब उन्हें फिर से उठाकर खेलने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो थोड़े पैनिक्ड हैं, और जिस तरह से आड़े तिरछे शॉट खेल के विकेट दे रहे हैं, अच्छी बॉलिंग पर भी 2 विकेट निकले हैं, ऐसा नहीं, और फिर जिस तरह से रन आउट हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा। और आखिर में जो मैं कहूँगा, जो आपने कहा टारगेट, तो जब उनके जोफ्रा आर्चर आके नीचे, आदिल राशिद 10वें 11वें नंबर के बैटर्स आके खेल रहे हैं, शॉर्ट्स रन भी बना रहे हैं 9 गेंदों पे 12 रन इस तरह से, तो ऐसा लगता नहीं है कि पिच में ऐसा कुछ है कि भारतीय बल्लेबाज वहां बैटिंग नहीं कर सके। और फास्ट आउट फील्ड है, बाउंड्री भी थोड़ी छोटी है मुझे लग रहा था देख के, तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि भारत एक और आसान जीत दर्ज करेगा और कुल मिला के 2-0 से बढ़त हासिल कर लेगा।
मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के फाइनल में अमेरिका की मेडिसन कीज ने आज विश्व की नंबर एक खिलाड़ी और पूर्व चैंपियन बेलारूस की अर्याना सबलेंका को 6-3 2-6 7-5 से हराकर 7 साल के बाद दोबारा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब पर कब्जा किया है। उधर पुरुष डबल्स के फाइनल में आज ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा की जोड़ी ने इटली के साइमन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी की जोड़ी को 6-7 7-6 6-3 से हराकर चैंपियनशिप जीती। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में कल वर्तमान चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के यानिक सिनर का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। महिला डबल्स के फाइनल में कल लातविया की ज़ेलेना ओस्टापेंको और ताइवान की शी सू वेई की जोड़ी का सामना अमेरिका की टेलर टाउनसेंड और चेक गणराज्य की कैटरीना सिनियाकोवा की जोड़ी से होगा। कीज ने अरमानों पे पानी फेर दिया, सबालेंका के तीसरी बार जीतने से रोक दिया, वरना वो पहली खिलाड़ी बनती पिछले 25 साल में जो लगातार 3 बार जीतती।
हाँ, और देखिए वर्ल्ड नंबर 1 है और मेडिसन कीज को ये पहले वो अनुभव नहीं था फाइनल खेलना और वर्ल्ड नंबर 1 से खेलना, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फाइट दी, जैसे शुरुआत देखें तो पहला सेट उन्होंने 6-3 से जीत लिया तो प्रेशर बनाया। सबालेंका ज़्यादा मुझे लग रहा था कि प्रेशर में थी, और जब मैच ख़त्म हुआ, हालांकि उन्होंने दूसरा सेट जिस तरह से 6-2 से जीता, तो मुझे लगा कि अब सबालेंका को जीतना चाहिए, और जब तीसरे सेट में 5-5 स्कोर था उस समय भी लग रहा था कि सबालेंका जीत जाएंगे, लेकिन जब अहम मौका आया जहां पे वो उनका सर्विस तोड़ने का जो 11वें गेम में था, तो वो अनफोर्स्ड एरर, मतलब उनकी उनके अच्छे खेल से नहीं बल्कि अपने ख़राब खेल से आप पॉइंट गंवा रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने 2 ऐसे मौका आए जब उन्होंने नेट पे खेल दिया और बाद में जिस तरह से वो खुद पे गुस्सा थी, तो पहले तो उन्होंने रैकेट को वहाँ पर पटका और उसके बाद वो टावल ओढ़ के और जिस तरह से वो सिसक रही थी, तो उनको लग रहा था कि मैंने बहुत गलती कर दी, मैं बिल्कुल पास आके। लेकिन दूसरी तरफ अगर मेडिसन कीज की बात करें तो उन्होंने हाल फिलहाल अपने जो कोचिंग स्टाफ है उसमें भी बदलाव किया है, काफ़ी मेहनत की है, बहुत ही मेहनती खिलाड़ी हैं वो भी, अभी ऐसा नहीं है कि कोई उभरती खिलाड़ी है, काफ़ी दिनों से
7 साल बाद दोबारा सेम टूर्नामेंट जीता है
जी, तो मुझे वही लग रहा है कि उनके लिए बड़ी उपलब्धि है, और उन्होंने अब जब उनकी रैंकिंग शायद अभी 14 है, अभी रैंकिंग भी और सुधरेगी, अब जिस तरह से खेल रही हैं तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भी वो, जैसे एक समय आ गया था कि सबालेंका हैं या ईगा हैं, ये 2-3 प्लेयर ही थी जो, अब उसमें ये भी शामिल होंगी और हर टूर्नामेंट में वो एक दावेदार के तौर पे उतरेंगी।
हॉकी इंडिया लीग में तमिलनाडु ड्रैगन्स और टीम गुनासिका के बीच आज का पहला मैच खेला गया। टीम गुनासिका ने तमिलनाडु ड्रैगन्स को 4-2 से हराया। आज का दूसरा मैच हैदराबाद तूफान और यूपी रुद्रास के बीच खेला जा रहा है। उधर महिला वर्ग में कल JSW सूरमा हॉकी क्लब और ओडिशा वॉरियर्स के बीच फाइनल खेला जाएगा।
दो सप्ताह के रोमांचक हॉकी एक्शन के बाद ओडिशा वॉरियर्स और सूरमा हॉकी क्लब कल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में महिला हॉकी इंडिया लीग HIL 2025 के पहले फाइनल में ऐतिहासिक भिड़ंत के लिए तैयार हैं। लीग तालिका में शीर्ष पर रही सूरमा ने 6 मैचों में 13 अंक हासिल किए जबकि वॉरियर्स केवल 2 अंक पीछे रही। 15 गोल के साथ सूरमा स्कोरिंग चार्ट में सबसे आगे है। हालांकि वॉरियर्स की मजबूत रक्षा पंक्ति को तोड़ना मुश्किल होगा क्योंकि उन्होंने इस सीजन में केवल 5 बार गोल खाए हैं। पहली बार जब दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था तो सूरमा ने हिना बानो और सोनम के गोल की बदौलत 2-1 से जीत हासिल की थी। दूसरे मुकाबले में वॉरियर्स ने शानदार वापसी की और एक करीबी मुकाबले में गोल रहित ड्रॉ के बाद शूटआउट में 2-0 की जीत हासिल की। JSW सूरमा हॉकी क्लब और ओडिशा वॉरियर्स दोनों ही प्रतिष्ठित हीरो महिला हॉकी इंडिया लीग ट्रॉफी को जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए पूरी ताकत से तैयार हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
संजीव जी, कल का फाइनल जो खेला जाएगा दोनों महिला क्लबों के बीच में, कितना महत्वपूर्ण है महिला हॉकी के लिए? और इस तरह की जो लीग आयोजित की है, भविष्य में उसके लिए कितना मतलब महत्वपूर्ण है?
देखिए, ये दोनों टीमें बिल्कुल, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से जो ये लीग शुरू हुई है, इससे काफ़ी उत्साहित थी जो प्लेयर थी, चाहे वो एस्टेब्लिश प्लेयर हो, भारतीय टीम के कप्तान हो, या फिर उभरती हुई खिलाड़ी, हर किसी ने कहा कि हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म मिला। उसकी दो तीन बातें हैं। पहला तो एक थी, आपको कुछ आर्थिक उसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके ऑक्शन होगा या आपको जो जिस तरह से खरीदती हैं टीमें वापस, उसमें फ़ायदा होगा। और दूसरा कि इंटरनेशनल लेवल के जो जो बेस्ट प्लेयर हैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम आप शेयर करते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, अनुभव आपको हासिल होता है। तो ये ओवरऑल भारतीय हॉकी के लिए अच्छा है, और ख़ासतौर पे विमेंस हॉकी में हाल फिलहाल में हमारी टीम ने बहुत अच्छा नहीं किया, ओलंपिक्स में भी आप क्वालिफाई नहीं कर सके, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ तक
आत्मविश्वास बढ़ेगा,
बिल्कुल, जहाँ तक फाइनल की हम बात करें, तो अगर हम स्टैंडिंग्स देखें तो सूरमा और ओडिशा वॉरियर जो हैं, पहले इसके दौरान लीग के दौरान उनके बीच जो मुकाबला हुआ था, तो उसमें सूरमा की टीम 2-1 से विजयी रही थी, और इसके अलावा टॉप पर भी रही। निश्चित तौर पे उन्होंने अच्छा खेल दिखाया है, और अब मुझे लग रहा है कि अन्य मैचों में जैसे उड़ीसा वॉरियर्स ने बंगाल टाइगर्स को भी 4-1 से हराया और कुछ अच्छी जीत दर्ज की है, लेकिन अब जिस तरह से फाइनल की हम बात करें, एक मुकाबला उनका ड्रॉ भी रहा था लीग चरण में सुरमा और उड़ीसा वॉरियर्स, बट दबदबे वाला खेल जो है ना दिखाया है सुरमा, तो उड़ीसा वॉरियर्स के लिए एक चुनौती होगी, और उम्मीद करें कि एक रोमांचक फाइनल देखने को मिलेगा।
उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से शुरू होने वाले हैं और खिलाड़ियों का आगमन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है।
देशभर में 10,000 से अधिक खिलाड़ियों के राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के अनुमान के साथ उत्तराखंड में तैयारियों के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही उत्साह का माहौल है। 26 जनवरी को ट्रायथलॉन प्रतियोगिता से हल्द्वानी में खेलों की शुरुआत होगी। राज्य सरकार और स्थानीय लोगों में राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रतियोगिताएं हल्द्वानी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुद्रपुर समेत कई शहरों में आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य उद्घाटन 28 जनवरी को देहरादून के राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में करेंगे। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से एक बार फिर संजीव जी मौका आया राष्ट्रीय प्रतिभाओं का चयन करने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए।
देखिए, ये राष्ट्रीय खेल जब होते हैं तो यहाँ पर खेलने वाले जो प्लेयर तो है ही हैं, जो देखने वाले हैं उनको भी एक ओलंपिक्स टाइप अनुभव होता है। मल्टी स्पोर्ट है, कई खेल हो रहे हैं, कई स्थापित नाम भी आते हैं, कई उभरते खिलाड़ी भी आते हैं, तो खिलाड़ियों के लिए भी एक तजुर्बा होता है कि वहाँ आप जाके खेलते हैं और आपको इतने बड़े मेगा इवेंट में परफॉर्म करना होता है। आपको अगर याद करें तो कई ऐसे प्लेयर हैं, इवन मनु भाकर भी थी, तो शुरुआत जब हुई थी तो उन्होंने इस तरह से नेशनल गेम में कई मेडल्स जीते थे, पहली बार उनका नाम वहाँ सुना गया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी कम उम्र में उन्होंने सफलता हासिल की थी। तो ओवरऑल देखें तो प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है और जो देखने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा है कि वहाँ जाएँ, कुछ बड़े खिलाड़ियों को सामने से देखें और कुछ उभरते खिलाड़ियों को परफॉर्म करते हुए देखें और एक मल्टी स्पोर्ट का आनंद लें। एक ऐसा लगे कि आपके शहर में, आपके राज्य में एक ओलंपिक, हम मिनी ओलंपिक देख रहे हैं।
मिनी ओलंपिक हो रहा है
जी।
गोवा में आयोजित 5वीं ओपन कराटे इंटरनेशनल चैंपियनशिप में चेन्नई के कराटे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट में चेन्नई के खिलाड़ियों ने 8 स्वर्ण और 11 रजत पदक जीते। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में आज गोवा एफसी और चेन्नईयन एफसी के बीच मैच खेला जा रहा है। गोवा 8 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर और चेन्नईयन एफसी 10वें स्थान पर है। टूर्नामेंट में कुल 13 टीमें भाग ले रही हैं। और श्रोताओं, अब इजाजत दीजिए, संजीव जी आप आए हमारे स्टूडियो में, तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, धन्यवाद।
नमस्कार।